मैं सेक्स को रूपांतरित करना चाहता हूं, वो कैसे रूपांतरित होगा, उसकी क्या विधि होगी? मैंने आपसे कहा एक द्वार खोलना जरूरी है, नया द्वार। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही उनके जीवन में सेक्स का आगमन नहीं हो जाता है। अभी देर है, अभी शरीर शक्ति इकट्ठी करेगा, अभी शरीर के अणु मजबूत होंगे, अभी उस दिन की प्रतीक्षा है जब शरीर पूरा तैयार हो जाएगा, ऊर्जा इकट्ठी होगी और द्वार जो बंद रहा है 14 वर्षों तक वो खुल जाएगा ऊर्जा के धक्के से और सेक्स की दुनिया शुरू होगी। एक बार द्वार खुल जाने के बाद नया द्वार खोलना कठिन हो जाता है, क्योंकि समस्त ऊर्जाओं का नियम यह है, समस्त शक्तियों का, वे एक दफा अपना मार्ग खोज लें बहने के लिए तो वे उसी मार्ग से बहना पसंद करती। गंगा बह गई है सागर की तरफ, उसने एक बार रास्ता खोज लिया, अब वो उसी रास्ते से बही चली जाती है, बही चली जाती है। रोज रोज नया पानी आता है, उसी रास्ते से बहता हुआ चला जाता। गंगा रोज नए रास्ते नहीं खोजती। जीवन की ऊर्जा भी एक रास्ता खोज लेती फिर वो उसी से बहती चली जाती। अगर जमीन को कामुकता से मुक्त करना है तो सेक्स का रास्ता खुलने के पहले नया रास्ता, ध्यान का रास्ता तोड़ देना जरूरी है। एक एक छोटे बच्चे को ध्यान की अनिवार्य शिक्षा और दीक्षा मिलनी चाहिए। तो हम उसे सेक्स के विरोध की दीक्षा देते हैं जो कि अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। सेक्स के विरोध की दीक्षा नहीं देनी है, शिक्षा देनी है ध्यान की, पॉजिटिव, कि वो ध्यान को कैसे उपलब्ध हो। और बच्चे ध्यान को जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि अभी उनकी ऊर्जा का कोई भी द्वार खुला नहीं, अभी द्वार बंद है, अभी ऊर्जा संरक्षित, अभी कहीं भी नए द्वार पर धक्के दिए जा सकते हैं और नया द्वार खोला जा सकता है। फिर यही बूढ़े हो जाएंगे और इन्हें ध्यान में पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ऐसे ही जैसे एक नया पौधा पैदा होता है, उसकी शाखाएं कहीं भी झुक जाती हैं, कहीं भी झुकाई जा सकती हैं, फिर वही बूढ़ा वृक्ष हो जाता है। फिर हम उसकी शाखाओं को झुकाने की कोशिश करते हैं, फिर शाखाएं टूट जाती हैं, झुकती नहीं। बूढ़े लोग ध्यान की चेष्टा करते हैं दुनिया में, जो बिल्कुल ही गलत है। ध्यान की सारी चेष्टा छोटे बच्चों पर की जानी चाहिए, लेकिन मरने के करीब पहुंच के आदमी ध्यान में उत्सुक होता है। वो पूछता है ध्यान क्या, योग क्या, हम कैसे शांत हो जाएं? जब जीवन की सारी ऊर्जा खो गई, जब जीवन के सब रास्ते सख्त और मजबूत हो गए, जब झुकना और बदलना मुश्किल हो गया, तब वो पूछता है अब मैं कैसे बदल जाऊं। एक पैर आदमी कब्र में डाल लेता है, दूसरा पैर बाहर रख के पूछता है ध्यान का कोई रास्ता है? अजीब सी बात है, बिल्कुल पागलपन की बात है। ये पृथ्वी कभी भी शांत और ध्यानस्थ नहीं हो सकेगी जब तक ध्यान का संबंध पहले दिन के पैदा हुए बच्चे से हम न जोड़ेंगे, अंतिम दिन के वृद्ध से नहीं जोड़ा जा सकता। व्यर्थ ही हमें बहुत शर्म उठाना पड़ता है बाद के दिनों में शांत होने के लिए, जो कि पहले एकदम हो सकता था। छोटे बच्चों को ध्यान की दीक्षा काम के रूपांतरण का पहला चरण, शांत होने की दीक्षा, निर्विचार होने की दीक्षा, मौन होने की दीक्षा। बच्चे ऐसे भी मौन हैं, बच्चे ऐसे भी शांत हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा दिशा दी जाए और उन्हें मौन और शांत होने के लिए घड़ी भर की शिक्षा दी जाए, तो जब वे 14 वर्ष के होने के करीब आएंगे, जब काम जगेगा, तब तक उनका एक द्वार खुल चुका होगा, शक्ति इकट्ठी होगी और जो द्वार खुला है उसी द्वार से बहनी शुरू हो जाएगी। उन्हें शांति का, आनंद का, कालहीनता का, निरअहंकार भाव का अनुभव सेक्स के बहुत अनुभव के पहले उपलब्ध हो जाएगा। वही अनुभव उनकी ऊर्जा को गलत मार्गों से रोकेगा और ठीक मार्गों पर ले आएगा। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को ध्यान तो नहीं सिखाते, काम का विरोध सिखाते हैं। पाप है, गंदगी है, कुरूपता है, बुराई है, नरक है, ये सब हम बताते हैं। और इस सब के बताने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हमारे बताने से वे और भी आकर्षित होते हैं और तलाश करते हैं कि क्या है ये गंदगी, क्या है ये नरक जिसके लिए बड़े इतने भयभीत और बेचैन हैं। और फिर थोड़े ही दिनों में उन्हें यह भी पता चल जाता है कि बड़े जिस बात से करने की कोशिश कर रहे हैं खुद दिन रात उसी में लीन। और जिस दिन उन्हें यह पता चल जाता है, माँ बाप के प्रति सारी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। माँ बाप के प्रति श्रद्धा समाप्त करने में शिक्षा का हाथ नहीं है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा समाप्त करने में माँ बाप का अपना हाथ है। आप जिन बातों के लिए बच्चों को गंदा कहते हैं, बच्चे बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि उन सारी गंदगियों में आप भली भांति लवलीन। आपकी दिन की जिंदगी दूसरी है और रात की दूसरी। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। छोटे बच्चे बहुत एक्यूट ऑब्जर्वर होते हैं, वो बहुत गौर से निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या हो रहा है घर में। वो देखते हैं कि माँ जिस बात को गंदा कहती है, बाप जिस बात को गंदा कहता है, वही गंदी बात दिन रात घर में चल रही। इसका उन्हें बहुत जल्दी बोध हो जाता है, उनका सारा श्रद्धा का भाव विलीन हो जाता है कि धोखेबाज हैं ये माँ बाप, पाखंडी हैं, हिपोक्रेट हैं, ये बातें कुछ और कहते हैं, करते कुछ और हैं। और जिन बच्चों का माँ बाप पर से विश्वास उठ गया, वो बच्चे परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर सकेंगे, इसको याद रखना। क्योंकि बच्चों के लिए परमात्मा का पहला दर्शन माँ बाप में होता है, अगर वो वहीं खंडित हो गया तो ये बच्चे भविष्य में नास्तिक हो जाने वाले। बच्चों को पहले परमात्मा की प्रतीति अपने माँ बाप की पवित्रता से होती है। पहली दफा बच्चे माँ बाप को ही जानते हैं निकटतम, और उनसे ही उन्हें पहली दफा श्रद्धा और रिवरेंस का भाव पैदा होता है। अगर वही खंडित हो गया तो इन बच्चों को मरते दम तक वापस परमात्मा के रास्ते पे लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहला परमात्मा ही धोखा दे गया। जो माँ थी, जो बाप था, वही धोखेबाज सिद्ध हुआ। आज सारी दुनिया में जो लड़के ये कह रहे हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं, कोई मोक्ष नहीं है, धर्म सब बकवास है, उसका कारण ये नहीं है कि लड़कों ने पता लगा लिया है कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं, उसका कारण ये है कि लड़कों ने माँ बाप का पता लगा लिया है कि वो धोखेबाज है। और ये सारा धोखा सेक्स के आसपास केंद्रित, ये सारा धोखा सेक्स के केंद्र पर खड़ा हुआ है। बच्चों को ये सिखाने की जरूरत नहीं कि सेक्स पाप है, बल्कि ईमानदारी से ये सिखाने की जरूरत है कि सेक्स जिंदगी का एक हिस्सा है और तुम सेक्स से ही पैदा हुए हो और हमारी जिंदगी में वो है, ताकि बच्चे सरलता से माँ बाप को समझ सके और जब जीवन को वो जाने तो वो आदर से भर सकें कि माँ बाप सच्चे और ईमानदार थे। उनको जीवन में आस्तिक बनाने में इससे बड़ा संबल और कुछ भी नहीं होगा कि वो अपने माँ बाप को सच्चा और ईमानदार अनुभव कर सके। लेकिन आज सब बच्चे जानते हैं कि माँ बाप बेईमान और धोखेबाज। ये बच्चे और माँ बाप के बीच एक कलह का कारण बनता है। सेक्स का दमन पति और पत्नी को तोड़ दिया है, माँ बाप और बच्चों को तोड़ दिया। नहीं, सेक्स का विरोध नहीं, निंदा नहीं, बल्कि सेक्स की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे ही बच्चे पूछने को तैयार हो जाएं, जो भी जरूरी मालूम पड़े, जो उनके समझ के योग मालूम पड़े, वो सब उन्हें बता दिया जाना चाहिए, ताकि वे सेक्स के संबंध में अति उत्सुक ना हो, ताकि उनका आकर्षण न पैदा हो, ताकि वो दीवाने होकर गलत रास्तों से जानकारी पाने की कोशिश ना करें। आज बच्चे सब जानकारी पा लेते हैं यहां वहां से, गलत मार्गों से, गलत लोगों से उन्हें जानकारी मिलती जो जीवन भर उन्हें पीड़ा देती। और माँ बाप और उनके बीच एक मौन की दीवार होती है, जैसे माँ बाप को कुछ भी पता नहीं और बच्चों को भी कुछ पता नहीं। उन्हें सेक्स की सम्यक शिक्षा मिलनी चाहिए, राइट एजुकेशन, और दूसरी बात उन्हें ध्यान की दीक्षा मिलनी चाहिए, कैसे मौन हो, कैसे शांत हो, कैसे निर्विचार हो। और बच्चे तत्क्षण निर्विचार हो सकते हैं, मौन हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। 24 घंटे में एक घंटे अगर बच्चों को घर में मौन में ले जाने की व्यवस्था हो, निश्चित ही वे मौन में तभी जा सकेंगे जब आप भी उनके साथ मौन बैठ सके। हर घर में एक घंटा मौन का अनिवार्य होना चाहिए। एक दिन खाना ना मिले घर में तो चल सकता है, लेकिन एक घंटा मौन के बिना घर नहीं चल सकता, वो घर झूठा है, उस घर को परिवार कहना गलत है। जिस परिवार में एक घंटे की मौन की दीक्षा नहीं, वो एक घंटे का मौन 14 वर्षों में उस दरवाजे को तोड़ देगा, रोज धक्के मारेगा उस दरवाजे को तोड़ देगा जिसका नाम ध्यान है, जिस ध्यान से मनुष्य को समयहीन, टाइमलेसनेस, इगोलेसनेस, अहंकार शून्य अनुभव होता है, जहां से आत्मा की झलक मिलती है। वो झलक सेक्स के अनुभव के पहले मिल जानी जरूरी, अगर वो झलक मिल जाए तो सेक्स के प्रति अति से दौड़ समाप्त हो जाएगी, ऊर्जा इस नए मार्ग से बहने लगेगी। ये मैं पहला चरण कहता हूं, ब्रह्मचर्य की साधना में, सेक्स के ऊपर उठने की साधना में, सेक्स की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला चरण है ध्यान और दूसरा चरण है प्रेम। बच्चे को बचपन से ही प्रेम की दीक्षा दी जानी चाहिए। हम अब तक यही सोचते रहे हैं कि प्रेम की शिक्षा मनुष्य को सेक्स में ले जाएगी, ये बात अत्यंत भ्रांत है। सेक्स की शिक्षा तो मनुष्य को प्रेम में ले जा सकती है, लेकिन प्रेम की शिक्षा कभी किसी मनुष्य को सेक्स में नहीं ले जाती, बल्कि सच्चाई उल्टी है। जितना प्रेम विकसित होता है उतनी ही सेक्स की ऊर्जा प्रेम में रूपांतरित होकर बटनी शुरू हो जाती। जो लोग जितने कम प्रेम से भरे होते हैं उतने ही ज्यादा कामुक होंगे, उतने ही सेक्सुअल होंगे। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है उनके जीवन में उतनी ही ज्यादा घृणा होगी, जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है उनके जीवन में उतना ही विद्वेष होगा, जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है उनके जीवन में उतनी ही ईर्ष्या होगी, जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है उतनी ही उनके जीवन में प्रतिस्पर्धा होगी, जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है उनके जीवन में उतनी चिंता और दुख होगा। दुख, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब से जो आदमी जितना ज्यादा घिरा है उसकी शक्तियां सारी की सारी भीतर इकट्ठी हो जाती हैं, उनके निकास का कोई मार्ग नहीं रह जाता, उनके निकास का एक ही मार्ग रह जाता है, वो सेक्स। प्रेम शक्तियों का निकास बनता है, प्रेम बहाव है, क्रिएशन सृजनात्मक है प्रेम, इसलिए वो बहता है और एक तृप्ति लाता है। वो तृप्ति सेक्स की तृप्ति से बहुत ज्यादा कीमती और गहरी। जिसे वो तृप्ति मिल गई वो फिर कंकड़ पत्थर नहीं बीनता, जिसे हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते। लेकिन घृणा से भरे आदमी को वो तृप्ति कभी नहीं मिलती। घृणा में वो तोड़ देता है चीजों को, लेकिन तोड़ने से कभी किसी आदमी को कोई तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलती है निर्माण करने से। द्वेष से भरा आदमी संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष से कोई तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलती है दान से, देने से, छीन लेने से नहीं। संघर्ष करने वाला छीन लेता है, छीनने से वो तृप्ति कभी नहीं मिलती जो किसी को दे देने से और दान से उपलब्ध होती है। महत्वाकांक्षी आदमी एक पद से दूसरे पद की यात्रा करता रहता है, लेकिन कभी भी शांत नहीं हो पाता। शांत वे होते हैं जो पदों की यात्रा नहीं बल्कि प्रेम की यात्रा करते हैं, जो प्रेम के एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करते हैं। जितना आदमी प्रेमपूर्ण होता है उतना तृप्ति, एक कंटेंटमेंट, एक गहरा संतोष, एक आनंद का भाव, एक उपलब्धि का भाव उसके प्राणों के रग रग में बहने लगता है। उसके सारे शरीर से एक रस झलकने लगता है जो तृप्ति का रस है, जो आनंद का रस है। वैसा तृप्त आदमी सेक्स की दिशाओं में नहीं जाता। जाने के लिए, रोकने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वो जाता ही नहीं, क्योंकि यही तृप्ति क्षण भर को सेक्स से मिलती थी, प्रेम से ये तृप्ति 24 घंटे को मिल जाती। तो दूसरी दिशा है कि व्यक्तित्व का अधिकतम विकास प्रेम के मार्गों पर होना चाहिए। हम प्रेम करें, हम प्रेम दें, हम प्रेम में जिए, और जरूरी नहीं है कि हम प्रेम मनुष्य को ही देंगे तभी प्रेम की दीक्षा होगी। प्रेम की दीक्षा तो पूरे व्यक्तित्व के प्रेम पूर्ण होने की दीक्षा है, वो तो टू बी लविंग होने की दीक्षा है। एक पत्थर को भी हम उठाएं तो ऐसे उठा सकते हैं जैसे मित्र को उठा रहे हैं, और एक आदमी का हाथ भी हम ऐसे पकड़ सकते हैं जैसे शत्रु का हाथ पकड़े हुए। एक आदमी वस्तुओं के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार कर सकता है। एक आदमी आदमियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है जैसा वस्तुओं के साथ भी नहीं करना चाहिए। घृणा से भरा हुआ आदमी वस्तुएं समझता है मनुष्यों को, प्रेम से भरा हुआ आदमी वस्तुओं को भी व्यक्तित्व देता है। एक फकीर से मिलने एक जर्मन यात्री गया हुआ था, वो किसी क्रोध में होगा, उसने दरवाजे पर जोर से जूते खोल दिए, जब जूतों को पटका, धक्का दिया दरवाजे को जोर से, क्रोध में आदमी जूते भी खोलता है तो ऐसे जैसे जूते दुश्मन, दरवाजा भी खोलता है तो ऐसे जैसे दरवाजे से कोई झगड़ा हो। दरवाजे को धक्के देकर वो भीतर गया, उस फकीर से जाके नमस्कार किया। उस फकीर ने कहा कि नहीं, अभी मैं नमस्कार का उत्तर न दे सकूंगा, पहले तुम दरवाजे से और जूतों से क्षमा मांगो। उस आदमी ने कहा, पागल हो गए, दरवाजों और जूतों से क्षमा, क्या उनका भी कोई व्यक्तित्व है? उस फकीर ने कहा, तुमने क्रोध करते समय कभी भी ना सोचा कि इनका कोई व्यक्तित्व है, तुमने जूते ऐसे पटके जैसे उनमें जान हो, जैसे उनका कोई कसूर हो, तुमने दरवाजा ऐसा खोला जैसे तुम दुश्मन हो। नहीं, जब तुमने क्रोध करते वक्त उनका व्यक्तित्व मान लिया तो पहले जाओ मांग के आ जाओ, तब मैं तुमसे आगे बात करूं, अन्यथा मैं बात करने को नहीं। अब वो आदमी दूर जर्मनी से उस फकीर को मिलने गया था, इतनी सी बात पर मुलाकात ना हो सकेगी, मजबूरी थी, उसे जाके दरवाजे पर हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी पड़ी कि मित्र क्षमा कर दो, जूतों को कहना पड़ा माफ करिए, भूल हो गई हमने जो आपको इस भांति गुस्से में खोला। उस जर्मन यात्री ने लिखा है कि लेकिन जब मैं क्षमा मांग रहा था तो पहले तो मुझे हंसी आई कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूं, लेकिन जब मैं क्षमा मांग चुका तो मैं हैरान हुआ, मुझे एक इतनी शांति मालूम हुई जिसकी मुझे कल्पना नहीं हो सकती थी कि दरवाजे और जूतों से क्षमा मांग के शांति मिल सकती। मैं जाकर उस फकीर के पास बैठा, वो हंसने लगा और उसने कहा, अब ठीक, अब कुछ बात हो सकती है, तुमने थोड़ा प्रेम जाहिर किया, अब तुम संबंधित हो सकते हो, समझ भी सकते हो, क्योंकि अब तुम प्रफुल्लित हो, अब तुम आनंद से भर गए हो। सवाल मनुष्यों के साथ ही प्रेमपूर्ण होने का नहीं, प्रेमपूर्ण होने का है। यह सवाल नहीं है कि मां को प्रेम दो, ये गलत बातें हैं। जब कोई मां अपने बच्चे को कहती है कि मैं तेरी मां हूं इसलिए प्रेम कर, तब वो गलत शिक्षा दे रही है, क्योंकि जिस प्रेम में इसलिए लगा हुआ है देयरफॉर, वो प्रेम झूठा है। जो कहता है इसलिए प्रेम करो कि मैं बाप हूं, वो गलत शिक्षा दे रहा है, वो कारण बता रहा है प्रेम का। प्रेम अकारण होता है, प्रेम कारण सहित नहीं होता। मां कहती मैं तेरी मां हूं, मैंने तुझे इतने दिन पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए प्रेम कर, वो वजह बता रही, प्रेम खत्म हो गया। अगर वो प्रेम भी होगा तो बच्चा झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मां है इसलिए प्रेम दिखाना पड़ रहा है। नहीं, प्रेम की शिक्षा का मतलब है प्रेम का कारण नहीं, प्रेम पूर्ण होने की सुविधा और व्यवस्था, कि बच्चा प्रेम पूर्ण हो सके। जो मां कहती मुझसे प्रेम कर क्योंकि मैं मां हूं, वो प्रेम नहीं सिखा रही, उसे ये कहना चाहिए कि ये तेरा व्यक्तित्व, ये तेरे भविष्य, ये तेरे आनंद की बात है कि जो भी तेरे मार्ग पे पड़ जाए तू उससे प्रेमपूर्ण हो, पत्थर पड़ जाए, फूल पड़ जाए, आदमी पड़ जाए, जानवर पड़ जाए। ये सवाल जानवर को प्रेम देने का नहीं, फूल को प्रेम देने का नहीं, मां को प्रेम देने का नहीं, तेरे प्रेमपूर्ण होने का है, क्योंकि तेरा भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि तू कितना प्रेमपूर्ण है, तेरा व्यक्तित्व कितना प्रेम से भरा हुआ है, उतना तेरे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ेगी। प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा चाहिए मनुष्य को, तो वो कामुकता से मुक्त हो सकता है। लेकिन हम तो प्रेम की कोई शिक्षा नहीं देते, हम तो प्रेम का कोई भाव पैदा नहीं करते, हम तो प्रेम के नाम पर भी जो बातें करते हैं वो झूठी सिखाते हैं उनको। क्या आपको पता है कि एक आदमी एक के प्रति प्रेमपूर्ण और दूसरे के प्रति घृणापूर्ण हो सकता है? यह असंभव है। प्रेमपूर्ण आदमी प्रेमपूर्ण होता है, आदमियों से कोई संबंध नहीं है उस बात का। अकेले में बैठता है तो भी प्रेमपूर्ण होता है, कोई नहीं होता तो भी प्रेमपूर्ण होता है। प्रेमपूर्ण होना उसके स्वभाव की बात है, वो आपसे संबंधित होने का सवाल नहीं। क्रोधी आदमी अकेले में भी क्रोधपूर्ण होता है, घृणा से भरा आदमी अकेले में भी घृणा से भरा होता है। वो अकेले भी बैठा है तो आप उसको देख के कह सकते हैं कि आदमी क्रोधी है, हालांकि वो किसी पर क्रोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सारा व्यक्तित्व क्रोधी। प्रेमपूर्ण आदमी अगर अकेले में बैठा है तो आप कहेंगे ये आदमी कितने प्रेम से भरा हुआ बैठा। फूल एकांत में खिलते हैं जंगल के, तो वहां भी सुगंध बिखेरते रहते हैं, चाहे कोई सूंघने वाला हो या ना हो, रास्ते से कोई निकले या निकले, फूल सुगंधित होता रहता है। फूल का सुगंधित होना स्वभाव है, इस भूल में आप मत पड़ना कि आपके लिए सुगंधित हो रहा है। प्रेमपूर्ण होना व्यक्तित्व बनाना चाहिए, वो हमारा व्यक्तित्व हो, इससे कोई संबंध नहीं कि वो किसके प्रति। लेकिन जितने प्रेम करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरे प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ और किसी के प्रति नहीं, और उनको पता नहीं कि जो सबके प्रति प्रेमपूर्ण नहीं वो किसी के प्रति प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। पत्नी कहती पति से मुझे प्रेम करना बस, फिर आ गया स्टॉप, फिर इधर उधर कहीं देखना मत, फिर और कहीं तुम्हारे प्रेम की जरा सी धारा ना बहे, बस प्रेम यानी इस तरफ। और उस पत्नी को पता नहीं कि ये प्रेम झूठा वो अपने हाथ से किए ले रही। जो पति प्रेमपूर्ण नहीं है हर स्थिति में हर एक के प्रति, वो पत्नी के प्रति भी प्रेमपूर्ण कैसे हो सकता है? प्रेमपूर्ण 24 घंटे के जीवन का स्वभाव, वो ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाएं और किसी के प्रति प्रेमहीन हो जाएं। लेकिन आज तक मनुष्यता इसको समझने में समर्थ नहीं हो पाई। बाप कहता है कि मेरे प्रति प्रेमपूर्ण, लेकिन घर में जो चपरासी है उसके प्रति वो तो नौकर, लेकिन उसे पता नहीं कि जो बेटा एक बूढ़े नौकर के प्रति प्रेमपूर्ण नहीं हो पाया है, वो बूढ़ा नौकर भी किसी का बाप है। वो आज नहीं कल जब उसका बाप भी बूढ़ा हो जाएगा उसके प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं रह जाएगा, तब ये बाप पछताएगा कि मेरा लड़का मेरे प्रति प्रेमपूर्ण नहीं। लेकिन इस बाप को पता ही नहीं कि लड़का प्रेमपूर्ण हो सकता था उसके प्रति भी, अगर जो भी आसपास थे सबके प्रति प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा दी गई होती तो वह इसके प्रति भी प्रेमपूर्ण होता। प्रेम स्वभाव की बात है, संबंध की बात नहीं। प्रेम रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम है स्टेट ऑफ माइंड, वो मनुष्य के व्यक्तित्व का भीतरी अंग है। तो हमें प्रेमपूर्ण होने की दूसरी दीक्षा दी जानी चाहिए एक एक चीज के प्रति। अगर बच्चा एक किताब को भी गलत ढंग से रखे तो गलती बात है, उसे उसी क्षण टोकना चाहिए कि तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए शोभादायक नहीं कि तुम इस भांति किताब को रखो। कोई देखेगा, कोई सुनेगा, कोई पाएगा कि तुम किताब के साथ दुर्व्यवहार किए हो, तुम एक कुत्ते के साथ गलत ढंग से पेश आए हो, ये तुम्हारे व्यक्तित्व की गलती है। एक फकीर के बाबत मुझे ख्याल आता है, एक छोटा सा फकीर का झोपड़ा था। रात थी, जोर से वर्षा होती थी, रात के 12 बजे होंगे। फकीर और उसकी पत्नी दोनों सोते थे। किसी आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। छोटा था झोपड़ा, कोई शायद शरण चाहता है। उसकी पत्नी से उसने कहा कि द्वार खोल दे। कोई द्वार पर खड़ा है, कोई यात्री, कोई अपरिचित मित्र। सुनते हैं उसकी बात, उसने कहा कोई अपरिचित मित्र, हमारे तो जो परिचित हैं वो भी मित्र नहीं होते। उसने कहा कोई अपरिचित मित्र, ये प्रेम का भाव, कोई अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है, द्वार खोल। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन जगह तो बहुत कम है, हम दो के लायक ही मुश्किल से है, कोई तीसरा आदमी भीतर आएगा तो हम क्या करेंगे। उस फकीर ने कहा पागल, ये किसी अमीर का महल नहीं है कि छोटा पड़ जाए, ये गरीब की झोपड़ी। अमीर का महल छोटा पड़ जाता है हमेशा, एक मेहमान आ जाए तो महल छोटा पड़ जाता है, ये गरीब की झोपड़ी है। उसकी पत्नी ने कहा इसमें झोपड़ी, अमीर और गरीब का क्या सवाल, जगह छोटी है। उस फकीर ने कहा जहां दिल में जगह बड़ी हो वहां झोपड़ा महल की तरह मालूम होता है, और जहां दिल में छोटी जगह हो वहां झोपड़ा, तो क्या महल भी छोटा और झोपड़ा हो जाता, द्वार खोल दे। द्वार पर खड़े हुए आदमी को वापस कैसे लौटाया जा सकता है? अभी हम दोनों लेटे थे, अब तीन लेट नहीं सकेंगे, तीनों बैठेंगे, बैठने के लिए काफी जगह है। मजबूरी थी, पत्नी को दरवाजा खोल देना पड़ा। एक मित्र आ गया, पानी से भीगा हुआ, उसके कपड़े बदले, फिर वो तीनों बैठ के गपशप करने लगे, दरवाजा फिर बंद है। फिर किन्हीं दो आदमियों ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब उस फकीर ने उस मित्र को कहा, वो दरवाजे के पास था, कि दरवाजा खोल दो, मालूम होता है कोई आया। उस आदमी ने कहा कैसे खोल दूं दरवाजा, जगह कहाँ है यहाँ। वो आदमी अभी दो घड़ी पहले आया था खुद, और भूल गया ये बात कि जिस प्रेम ने मुझे जगह दी थी वो मुझे जगह नहीं दी थी, प्रेम था उसके भीतर इसलिए जगह दी थी। अब फिर कोई दूसरा आ गया, फिर जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, मुश्किल से हम तीन बैठे हुए हैं। वो फकीर हंसने लगा, उसने कहा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं की थी, प्रेम था इसलिए जगह की थी, प्रेम अब भी है। वो तुम पर चुक गई, नहीं गया और समाप्त नहीं हो गया। दरवाजा खोलो। अभी हम दूर दूर बैठे हैं, फिर हम पास पास बैठ जाएंगे। पास पास बैठने के लिए काफी जगह, और रात ठंडी है, पास पास बैठने में आनंद ही और होगा। दरवाजा खोलना पड़ा, दो आदमी भीतर आ गए, फिर वे पास पास बैठ के गपशप करने लगे। और थोड़ी देर बीती है और रात आगे बढ़ गई और वर्षा हो रही, और एक गधे ने आके सिर लगाया दरवाजे से, पानी में भीग गया है, वो रात शरण चाहता है। उस फकीर ने कहा कि मित्रों, वो दो मित्र दरवाजे पर बैठे हुए थे जो पीछे आए थे, दरवाजा खोल दो। कोई अपरिचित मित्र फिर आ गया, उन लोगों का ये मित्र वगैरह नहीं है, ये गधा है, इसके लिए जगह खोलने की कोई जरूरत नहीं। उस फकीर ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, अमीर के दरवाजे पर आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार किया जाता है। ये गरीब की झोपड़ी है, हम गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार करने की आदत से भरे, दरवाजा खोल दो। पर वे दोनों कहने लगे, जगह? उस फकीर ने कहा, जगह बहुत है, अभी हम बैठे हैं, अब हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के लिए काफी जगह। और फिर तुम घबराओ मत, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा बाहर होने के लिए तैयार हूं, प्रेम इतना कर सकता है। एक लविंग एटीट्यूड, एक प्रेमपूर्ण हृदय बनाने की जरूरत है। जब प्रेमपूर्ण हृदय बनता है तो व्यक्तित्व का एक तृप्ति का भाव, एक रसपूर्ण तृप्ति। क्या आपको कभी ख्याल है, जब भी आप किसी के प्रति जरा से प्रेमपूर्ण हुए, पीछे एक तृप्ति की लहर छूट गई? क्या आपको कभी भी ख्याल है कि जीवन में तृप्ति के क्षण वे ही रहे हैं जो बेशर्त प्रेम के क्षण रहे होंगे, जब कोई शर्त ना रही होगी प्रेम की, और जब आपने रास्ते चलते एक अजनबी आदमी को देख के मुस्कुरा दिया हो, उसके पीछे छूट गई तृप्ति का कोई अनुभव है? उसके पीछे साथ आ गया एक शांति का भाव, एक कानों में एक आनंद की लहर का कोई पता है? जब राह चलते किसी आदमी को उठा लिया हो, किसी गिरते को संभाल लिया हो, किसी बीमार को एक फूल दे दिया हो, इसलिए नहीं कि वो आपकी मां है, इसलिए नहीं कि वो आपका पिता है, नहीं, वो आपका कोई भी नहीं है, लेकिन एक फूल किसी बीमार को दे देना आनंदपूर्ण है। व्यक्तित्व में प्रेम की संभावना बढ़ती जानी चाहिए, वो इतनी बढ़ जानी चाहिए पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, आदमियों के प्रति, अपरिचितों के प्रति, अनजान लोगों के प्रति, विदेशियों के प्रति, जो बहुत दूर है उनके प्रति, चांद तारों के प्रति। प्रेम हमारा बढ़ता चला जाए, जितना प्रेम हमारा बढ़ता है उतनी ही सेक्स की जीवन में संभावना कम होती चली जाती है। प्रेम और ध्यान दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोल देते हैं जो परमात्मा का दरवाजा है। प्रेम धन ध्यान बराबर परमात्मा। प्रेम और ध्यान का जोड़ हो जाए और परमात्मा उपलब्ध हो जाए, और उस उपलब्धि से जीवन में ब्रह्मचर्य फलित होता है, फिर सारी ऊर्जा एक नए ही मार्ग पर ऊपर चढ़ने लगती, फिर बह बह के निकल नहीं जाती, फिर जीवन से बाहर निकल निकल के व्यर्थ नहीं हो जाती, फिर जीवन के भीतरी मार्गों पर गति करने लगती, उसका एक ऊर्ध्व गमन, एक ऊपर की तरफ यात्रा शुरू होती। अभी हमारी यात्रा नीचे की तरफ है, सेक्स ऊर्जा का अधोगमन है, नीचे की तरफ बह जाना है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरफ उठ जाना है। प्रेम और ध्यान ब्रह्मचर्य के सूत्र हैं। तीसरी बात कल आपसे करने को हूं कि ब्रह्मचर्य उपलब्ध होगा तो क्या फल होगा, क्या होगी उपलब्धि, क्या मिल जाएगा? ये दो बातें मैंने आज आपसे कही, प्रेम और ध्यान। मैंने ये कहा कि छोटे बच्चों से इनकी शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। इससे आप ये मत सोच लेना कि अब तो हम बच्चे नहीं रहे इसलिए करने को कुछ बाकी नहीं, ये आप मत सोच के चले जाना, अन्यथा मेरी मेहनत फिजूल गई। आप किसी भी उम्र के हों, ये काम शुरू किया जा सकता है, ये काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है उतना मुश्किल होता चला जाता है, बच्चों के साथ हो सके सौभाग्य, लेकिन कभी भी हो सके सौभाग्य, इतनी देर कभी भी नहीं हुई है कि हम कुछ भी ना कर सके। हम आज शुरू कर सकते हैं, और जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं वो बूढ़े में भी बच्चों जैसे ही होते हैं, वो बुढ़ापे में भी शुरू कर सकते हैं अगर उनकी सीखने की क्षमता है, अगर लर्निंग का एटीट्यूड है, अगर वो इस ज्ञान से नहीं भर गए कि हमने सब जान लिया और सब पा लिया, तो वे सीख सकते हैं और वे छोटे बच्चों की भांति नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। बुद्ध के पास एक भिक्षु कुछ वर्षों से दीक्षित था। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा कि भिक्षु तुम्हारी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा मेरी उम्र 5 वर्ष। बुद्ध कहने लगे 5 वर्ष? तुम तो कोई 70 वर्ष के मालूम पड़ते हो, कैसा झूठ बोलते हो। उस भिक्षु ने कहा लेकिन 5 वर्ष पहले ही मेरे जीवन में ध्यान की किरण फूटी, 5 वर्ष पहले ही मेरे जीवन में प्रेम की वर्षा हुई। उसके पहले मैं जीता था वो सपने में जीना था, वो नींद में जीना था, उसकी गिनती अब मैं नहीं करता हूं, कैसे करूं? जिंदगी तो इधर 5 वर्षों से शुरू हुई, इसलिए मैं कहता हूं मेरी उम्र 5 वर्ष। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा भिक्षुओं इस बात को ख्याल में रख लेना, अपनी उम्र आज से तुम भी इसी तरह जोड़ना, यही उम्र को नापने का ढंग समझना। अगर प्रेम और ध्यान का जन्म नहीं हुआ है तो उम्र फिजूल चली गई, अभी आपका ठीक जन्म भी नहीं हुआ है और कभी भी इतनी देर नहीं हुई जबकि हम प्रयास करें, श्रम करें और हम अपने नए जन्म को उपलब्ध ना हो जाएं। इसलिए मेरी बात से यह नतीजा मत निकाल लेना आप कि आप तो बचपन के पार हो चुके, इसलिए ये बात आने वाले बच्चों के लिए। कोई आदमी किसी भी क्षण इतने दूर नहीं निकल गया है कि वापस न लौट आए, कोई आदमी कितने ही गलत रास्तों पर चला हो ऐसी जगह नहीं पहुंच गया है
कि ठीक रास्ता उसे दिखाई ना पड़ सके, कोई आदमी कितने ही हजारों वर्षों से अंधकार में रह रहा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिया जलाएगा तो अंधकार कहेगा कि मैं 1000 वर्ष पुराना हूं इसलिए नहीं टूटता। दिया जलाने से एक दिन का अंधकार भी टूटता है, 1000 साल का अंधकार भी उसी तरह टूट जाता है। दिया जलाने की चेष्टा बचपन में आसानी से हो सकती है, बाद में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन कठिनाई का अर्थ असंभावना नहीं, कठिनाई का अर्थ है थोड़ा ज्यादा श्रम, कठिनाई का अर्थ है थोड़ा ज्यादा संकल्प, कठिनाई का अर्थ है थोड़ा ज्यादा ज्यादा लगन पूर्वक ज्यादा सातत्य से तोड़ना पड़ेगा व्यक्तित्व की जो बंधी धाराएं हैं उनको, और नए मार्ग खोलने पड़ेंगे। लेकिन जब नए मार्ग की जरा सी भी किरण फूटनी शुरू होती है तो सारा श्रम ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया और बहुत कुछ पा लिया है। जब एक किरण भी आती है उस आनंद की, उस सत्य की, उस प्रकाश की, तो लगता है हमने तो बिना कुछ किए पा लिया है, क्योंकि हमने जो किया था उसका तो कोई भी मूल्य नहीं था, जो हाथ में आ गया है वो तो अमूल्य है। इसलिए ये भाव मन में आप न लेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करता हूँ।